राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवा। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नागर नंदा बजर मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं 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 जय सीताराम चंदा भजुर मन गोविंदा भजुर मन गोविंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है 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 जैसे नदियों में गंगा भजुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा कर सर पर अधर अमर कर अनुसर कर परवर धर में करे हर हर सूर्य वर्य पर यतियन कर नटवर मन हर भैर बने हर मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवरन में घन रण पट भरण फरण पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिज रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिज रंग भर सुंदर तब डमक डमक दादुर दब डमक बहकत मोर मलाल गिरा तब पियु पियु शब्द पुकारत जात पियु पियु कोकिल कण गिरा तब गड़ गड़ नब हो कड़ा कान कण गिरिवर शिखर बजे कण पट फरड़ फरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिज रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिज ब्रिज की सब बाला रूप रसाला ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करीबे हला नंद लाला लागी तन ज्वाला विपद विशाला दिन दयाला नंद लाला आये नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी कमण सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी गिरधारी रे जिज गए विसारी गिरधारी रे जिज जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे जय 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 जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
भगवान की
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, शशि गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 20 से प्रारंभ करेंगे। तत्रेकदा तद्गिरिकाननाश्रय करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकंटकं कीचक वेणुवेत्रवत् विशालगुल्मं पुरुजन् वनस्पतिं यदा यद्गन्धमात्राधरयो गजेन्द्रा व्याद्रादयो व्यालमृगा सखगा महोरगा चापि भया द्रवन्ति सगोर कृष्णा शर्वाश्च मर्य व्रीकावराः महिषर्षशल्या गोपूश्च शाला वृकिमर्कटाश्च अन्यत्र शूद्रा हरिणाशशादय चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण सधर्मतप्त करिभिः करेणुभिः वृतो मदच्युतकरभेरनुद्रुत गिरिं गरिम्णा परित प्रकम्पयन् निषेव्यमाणो लिकुले मदाशने सरो नीलं पङ्कजरेणुरुषितम् जिघ्रन् विदुरान् मदविह्वलेक्षण वृतस्वयूतेन त्रिशार्दितेन वृतस्वयूतेन त्रिशार्दितेन तत् सरोवराभ्यासमतागमद्रितम् विगाह्य तस्मिन् मृताम्बुनिर्मलम् हेमारविन्दोत्पलरेणुरूषितम् पपो निकामं निजपुष्करोद्धृत आत्मानमद्भिस्त्रपयन् गतकल्मभ सपुष्करेणोद्धृतशीकराम्बुभिः निरपाययन्सत्रयन्यथाग्अन्यथा गृहि निपाययन्संस्त्रपयन्यथा गृहि घृणीकरेणु कर्माश्च दुर्मदो नाचष्ट कृच्छ्रं कृपणो जमायया तं तत्र कश्चिन् नृपदेव चोदितो ग्राहो बलिं यांश्चरणे रुषाग्रहीत् यदीच्छ एवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे तथा तुरं यूथपतिं करेणवो विक्रूश्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्रुशुर्दीनधियो परे गजा पार्षीण ग्राहास्तारयितुं न चाशकन् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवमाश श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्वम् न जाने प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूर्तेर्महतभी ययिमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूष पूरुष भुंतेर्गुणनशो रशोडशात्मक सुलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसी में
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रति बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान ने लिखा है। भगवान के शक्त्यावेश अवतार वेद व्यास जी रचित श्रीमद् भागवतम। वेद व्यास जी जब ये भागवत लिख रहे थे तो यह ग्रंथ लिखने से पहले वेदव्यास जी ने समाधि में भगवान का दर्शन किया। वास्तव में जो भगवान है और भगवान का दर्शन करते हैं वही भागवत लिख सकते हैं और भागवत बोल सकते हैं। वेदव्यास जी ने समाधि में भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान की माया का दर्शन किया। कैसी माया है? कहते हैं यया सम्मोहितो जीव, जो माया इस संसार के समस्त जीवों को मोहित करती रहती है, चाहे वह स्कूल में पढ़ने वाला बालक हो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति भी क्यों न हो, भगवान की माया उसे गिरा देती है। माया अलग अलग रूप लेकर अलग अलग प्रभाव से संसार के लोगों को मोहित करती है, और संसार के लोग इस माया में फंसकर दुखी होते हैं। सभी लोगों के दुख का दर्शन वेदव्यास जी ने समाधि में किया। वेदव्यास जी ने देखा कि संसार में किस प्रकार से लोग दुखी हो रहे हैं। एक से एक लोग एक से एक दुख को लेकर दुखी है। ऐसा कोई नहीं है जो इस संसार में सुखी हो, सब लोग दुखी हैं। झोपड़ी में रहने वाला, दो पैर पर चलने वाला, भगवान ने बहुत सुंदर यह चरण पांव दिए हैं, लेकिन इस पांव से चलने वाला सोचता है कि यदि साइकिल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जिसके पास साइकिल है वह सोचते हैं कि मोटरसाइकिल आ जाए पेट्रोल से चलने वाली, क्या यह पैडल मारकर घुमाना, मोटरसाइकिल मिल जाए तो आनंद आ जाए। जिसके पास मोटरसाइकिल है वह मोटरसाइकिल वाले सोचते हैं ये बारिश की ऋतु है, भीग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चार पहिए की कार आ जाती तो आनंद आ जाता। जिसके पास चार पहिए की कार है वे लोग सोचते हैं कि मेरे पास मर्सिडीज आ जाए तो बहुत अच्छा है, होंडा सिटी आ जाए, लेंसर आ जाए तो अच्छा। जिसके पास अच्छी से अच्छी कार है वे लोग सोचते हैं मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए तो अच्छा। तो इस प्रकार से संसार में लोगों की कामनाएं बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और इस कामनाओं के कारण लोग दुखी होते हैं। और भी दुख के बहुत प्रकार है। माया इस संसार में बहुत प्रकार के दुख, बहुत प्रकार के मोह में पड़ाकर, मोह में डालकर व्यक्ति को दुखी करती रहती है। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने यह संसार ही दुख देने के लिए बनाया है। दुखालयम, आलय का अर्थ होता है कि बिल्कुल स्थित टिक जाना। इस संसार में भगवान ने, जैसे हम हमारे घर पर फर्नीचर को कितना अच्छी तरह से सजाते हैं, सोफा सेट है, पर्दे हैं, दीवार है, बारी है, फोटो है, अच्छी तरह से हम सजाते हैं, वैसे भगवान ने इस संसार में दुखों को बहुत अच्छी तरह से सजा कर रखा है। और ऐसा सजा कर रखा है कि व्यक्ति कहीं भी जाए तो उसे दुख ही मिलता है। कितना भी प्रयास करे उसे केवल दुख मिलता है। व्यास देव जी ने यह दर्शन किया, संसार के सभी लोग दुखी हैं। अनर्थ उपशमम साक्षात, व्यासदेव जी ने देखा कि सब लोग अनर्थ भोग रहे हैं। अर्थ का मीनिंग होता है सुख, और अनर्थ का मीनिंग है दुख। संसार में सब लोग दुखी हैं। व्यासदेव जी के मन में, क्योंकि भगवान है इसलिए उनके मन में जिज्ञासा हुई, इस संसार के लोगों का दुख कैसे दूर हो, क्योंकि संसार में इतने मूर्ख लोग भरे हुए हैं कि लोग दुखी हैं, स्वयं दुखी हो रहे हैं, लेकिन यह एहसास नहीं कर रहे हैं कि मैं दुखी हूं। प्रायः जब हम यह प्रवचन करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हम दुखी नहीं हैं, हमारे पास धन है, गाड़ी, बंगला, पत्नी, पुत्र, सब कुछ है, हम थोड़ी ना दुखी हैं। रजोधिका कर्म परा दुखेच सुख मानी न, स्वयं दुखी है। बनाने वाला कह रहा है कि तुम दुखी हो, लेकिन यह मान रहे कि हम सुखी हैं। संसार में सबसे बड़ा रोग है यह दुखी रहना, और हम रोग के बारे में ही नहीं जानते हैं। अब हमें कौन सा रोग लगा है यदि हम यह नहीं जानते हैं तो इस रोग से मुक्त कैसे होंगे। परंतु व्यासदेव जी ने जाना कि सब लोग दुखी हैं, और मन में जिज्ञासा हुई कि सभी लोगों को दुखों से मुक्त करने के लिए क्या किया जाए। अनर्थ को उपशम करने के लिए, अनर्थ को, दुख को काटने के लिए क्या किया जाए। तब सूत गोस्वामी कहते हैं व्यासदेव जी ने देखा, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। इस संसार में जीव का अनर्थ, जीव का दुख तब ही नष्ट हो सकता है, इस संसार में जीव का दुख तब ही दूर सकते हो सकता है जब वह अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। भक्ति योगम अधोक्षज, अधोक्षज की भक्ति के बिना दुख दूर नहीं हो सकता। तो प्रश्न यह होता है कि उस अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए। दुख दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो भक्ति कैसे हो? भक्ति का अर्थ शास्त्रों में दिया है, श्रवणम कीर्तनम नवधा भक्ति के, नवधा साधन के द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और उस नवधा भक्ति में श्रेष्ठ है श्रवणम। भगवान के बारे में सुनना ये भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। व्यासदेव जी ने समाधि में यह भी देखा, दुखी है सब लोग, दुख से मुक्त तब हो सकते हैं जब भगवान की भक्ति करेंगे, और भगवान की भक्ति का साधन है भगवान की कथा सुनना। तो अब इस संसार के लोग भगवान की कथा सुन सके ऐसा उपाय किया, भक्तिर लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। व्यासदेव जी ने सोच लिया कि अब लोगों का कल्याण करने के लिए मैं सात्वत संहिता श्रीमद भागवतम की रचना करूंगा। स्पेशल संसार में और कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी ने भागवत ग्रंथ लिखा है, क्योंकि भागवत में भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है। जब तक हम भगवान और भगवान के भक्त की कथा नहीं सुनते हैं तब तक भगवान में भक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। भगवान में भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम करना। इस संसार में प्रेम तो सब लोग करते हैं, परंतु जितना जितना प्रेम करते हैं उतना उतना दुखी होते हैं, क्योंकि वास्तव में हम जो कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है। इस संसार में कोई लड़का या लड़की, कोई पुरुष या स्त्री आपस में प्रेम करते हैं, आपस में रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, तो उसे प्रेम की संज्ञा दी जाती है, परंतु शास्त्र कहता है वह प्रेम नहीं है। पहले प्रेम का अर्थ तो जानो, प्रेम क्या होता है। इस संसार में हमने देखा है बहुत लोग प्रेम करते हैं। एक संत तो कहते हैं प्रेम दो प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है जब हमें घाव लगता है, घाव कहीं चल रहे हैं गिर गए, खरोच आ गई, चमड़ी निकल गई, तो घाव लगता है और 15-20 दिन महीने भर वह घाव रहता है। एक प्रेम घाव जैसा है और दूसरा प्रेम पानी जैसा है। इस संसार में जो प्रेम है ना, ये प्रेम घाव के समान है। कैसे? मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो तो गिर गए तो घुटन पर बहुत बड़ा खरोच आ गई, चमड़ी निकल गई और बहुत खून निकलने लगा, तो उस घाव को क्या करेंगे? बहुत अच्छी तरह से मलम पट्टी करेंगे, फिर तो उसे संभालेंगे, इसमें पानी न लगे, कोई नजदीकी आता है तो अरे दूर हो दूर हो, हवा डालेंगे या मक्खी या कोई न बैठे, उसको संभाल कर रखेंगे। स्नान करने जाएंगे तो थैली बांध कर जाएंगे, बहुत बहुत उसकी चाकरी करेंगे, और धीरे 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 जैसे जैसे वह घाव मिटता जाता है तो फिर उसके ऊपर ध्यान देना हम बंद कर देते। एक दिन ऐसा आता है कि वह घाव था या नहीं पता भी नहीं लगता है। घाव जब मिट जाता है तो तब तो फिर बाद में तो पता भी नहीं चलता यह घाव था कि नहीं। बस ऐसा ही है संसार का प्रेम। किसी लड़की और लड़के में आपस में प्रेम, प्रेम कहते हैं, प्रेम नहीं है, वह घाव के समान, जैसे वो घाव को संभालता है कि कोई आए नहीं, कोई स्पर्श ना करे, वैसे वह लड़का लड़की के लिए संभाल कर बात करता है, कोई उसके सामने देखे नहीं, कोई स्पर्श न करे, उसकी बहुत संभाल रखता है, ख्याल रखता है, जैसे वह घाव का ख्याल रखता है। लेकिन धीरे 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 करते 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 कुछ समय बीतने के बाद जैसे वह घाव मिट गया, पता भी नहीं चला घाव था कि नहीं, वैसे संसार का प्रेम खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है प्रेम था या नहीं कभी। ऐसा प्रेम देखते हैं, विवाह के पहले वादा करते हैं, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं नहीं, मेरे बिन तुम नहीं, कभी नहीं होंगे जुदा। गाना गाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, तुम मेरे बिना नहीं। वही पत्नी विवाह करने के 2-3 साल के बाद क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं। और हमने तो बहुत दृष्टांत भी देखे हैं। मान लीजिए पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तो कभी कभी पत्नी मायके मायके जाती है तो पति बंदा बिंदास्त हो जाता है अब थोड़े दिन के लिए, जैसे जेल से छूटा हो। कभी कभी हम पूछते हैं भक्तों से कि आप रोज प्रवचन में क्यों आते हो, प्रभु जी पत्नी गई है गांव में। जब तक यहां थी तब तक जेल में बंधे थे, फिर वो जेल वो प्रेम ही जेल बन जाती है। तो ये संसार का प्रेम प्रेम नहीं है। और इस संसार के मान लीजिए किसी के साथ प्रेम करने से हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि यह जीव जो है यह आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है। और हम प्रेम किससे कर रहे हैं, जड़ तत्व से। जीव का स्वरूप क्या है, प्रेम सबसे पहले, प्रेम करने से पहले प्रेम के बारे में जानना चाहिए, प्रेम का तत्व और प्रेम का लक्षण जानना चाहिए। प्रेम का तत्व क्या है, यह आत्मा भगवान का सच्चिदानंद अंश है, यह आत्मा आध्यात्मिक वस्तु है। और हम जिससे इस जगत में प्रेम करते हैं यह जड़ वस्तु से प्रेम करते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे, देखिए अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलिए। आत्मा हम आत्मा है और आत्मा आध्यात्मिक तत्व है, और हम इस संसार के जड़ देह से, इस संसार की मैटर वस्तु से प्रेम करते हैं। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो वह लड़का उस लड़की से तब तक प्रेम करता है जब तक उनके हृदय में आत्मा है। जैसे ही वह लड़की मर जाती है, मान लीजिए आत्मा निकल गई, फिर वह लड़की से प्रेम करेगा, फिर तो वह उसको देखना भी नहीं चाहेगा। पूछा जाए आप तो इसे बहुत प्रेम करते थे, और जिससे प्रेम करते थे आपके सामने है, वही आंखें हैं, वही नाक है, वही कान है, जिसकी उपमा आप चंद्रमा से देते थे, सब कुछ आपके सामने है, तो प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई। तो वास्तव में इस संसार में तत्व से देखा जाए तो शरीर से प्रेम कोई नहीं करता है। शरीर वही है, देखिए शरीर वही है, जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो वो प्रेम करना बंद कर देता है। यदि उसका असली प्रेम होता तो शरीर को अपने साथ रखता जीवन भर। कितना भी अच्छा पति हो, जैसे ही वो मर जाता है तो पत्नी कहती तुरंत निकालो इसे। कितना भी अच्छा पुत्र हो निकालो, क्यों भाई, पुत्र तो जिससे प्रेम करते थे सामने, शरीर से प्रेम करते हैं। वास्तव में आत्मा प्रेम केवल परमात्मा से कर सकता है। और प्रेम का लक्षण क्या है, प्रेम कब टिकता है, प्रेम कब टिकता है, जब एक प्रेमी प्रेमिका की सभी इच्छा को पूर्ण करता है, और एक प्रेमिका अपने प्रेमी की सभी इच्छा पूर्ण करती है, तब वह प्रेम टिकता है, उसे प्रेम माना जाता है। और वह इच्छा पूर्ण करने में भी अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बिना स्वार्थ के। तो आजकल का प्रेम पता है क्या होता है, लड़के और लड़के मिलते हैं और लड़के के पास कुछ धन होता है तो वह लड़का लड़की के ऊपर धन खर्च करता है, लेकिन खर्च करते करते कितना खर्च करेगा, जब वह लड़का कंगाल हो जाएगा तो फिर लड़की उसे छोड़कर चली जाती, प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम में एक दूसरे को संतुष्ट होना चाहिए। तो इस संसार में संतुष्ट केवल कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण हमारी सभी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, और हम केवल भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करने वाले एकमात्र भगवान हैं। तुम सबको भगवान से प्रेम करना चाहिए, और भगवान से प्रेम करके ही हम सुखी हो सकते हैं। प्रेम करना हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। तो ये तो ढूंढ, आत्मा तो ढूंढता रहेगा प्रेम करूं प्रेम करूं, परंतु प्रेम करने वाला योग्य पात्र होना चाहिए। जब तक आत्मा को प्रेम करने वाला योग्य पात्र नहीं मिलता है तब तक वो ढूंढते रहता है, और संसार के लोगों में ढूंढते ढूंढते दुखी होते रहता है। कभी मोबाइल में प्रेम करता है, कभी पत्नी में, कभी लड़की में, कभी गाड़ी में, कभी बंगले में, कभी धन में, प्रेम डाइवर्ट होते रहता है, टिकता नहीं, क्योंकि उस प्रेम में उसे सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही यह आत्मा परमात्मा से प्रेम करने लगे तो उसे संपूर्ण सुख और आनंद की अनुभूति होने लगती है। देखिए, हमारा भगवान से प्रेम नहीं है, थोड़ा सा प्रेम की एक आभा आ रही है तो जीवन में कितना सुख मिल रहा है। कल्पना कीजिए, जब वो प्रेम के स्तर पर हम पहुंचेंगे तब तो अद्भुत एक चमत्कारी सुख मिलता है, प्रेम कार दिया है। तो जीवन में व्यक्ति तब सुखी हो सकता है जब भगवान से प्रेम करे, और भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान की कथा सुननी अति आवश्यक। इसलिए वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ का निर्माण किया। कुछ लोग भागवत के बारे में जानते हैं, भागवत ग्रंथ को अपने घर पर भी लाते हैं, लेकिन घर पे लाकर पोथी में बांधकर मंदिर के ऊपर रख देते हैं, भागवत की परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। परंतु शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि भागवत का सही सही लाभ तब मिल सकता है यस्याम वे श्रुय माणायाम कृष्ण परम पुरुषे। जब उस भागवत को खोलकर उसको पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे, तब जाकर उस भागवत का सही सही लाभ हो सकता है। और भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। और वह भागवत सुनते रहने से क्या होगा, जीवन में जितने भी शोक मोह और भय है ये सब से मुक्त हो जाएंगे और कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होगा और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो इस जीवन में सुखी करने वाली ये भागवत कथा है, और इस जीवन के बाद मृत्यु के बाद भगवान का धाम दिलाने वाली यह भागवत कथा है। प्रति बुधवार को हम इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, परम सौभाग्य है। ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है, उनकी कृपा से यह सात्वत संहिता, ये भागवत संहिता का हम प्रति बुधवार को श्रवण कर रहे हैं। तो इस भागवत कथा में हम अष्टम अध्याय के अष्टम स्कंद के दूसरे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले बुधवार को हमने त्रिकुट पर्वत, किस प्रकार से त्रिकुट पर्वत में क्या क्या वनस्पति है, क्या पेड़ पौधे हैं, त्रिकुट पर्वत का ऐश्वर्य का वर्णन किया था। कितना सुंदर वातावरण है, नदी बहती है, खल 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 झरने का आवाज, कोयल की आवाज, पक्षी की आवाज, बहुत सुंदर सुंदर सुगंध बहती है कमल की। तो इस त्रिकुट पर्वत का वर्णन हमने पिछले बुधवार को किया। आइए अब इस साइट पर, अब तक सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को जहां पर यह कथा होने वाली है उस साइट का वर्णन किया कि कैसी जगह थी, क्या पेड़ पौधे, क्या वनस्पति थी। अब उस जगह में क्या घटना घटने जा रही है इसका वर्णन आज से प्रारंभ करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्रे कदा तद गिरिकान नाश्रय करेणु भीरवाण युद्ध पश्चरन सकंटकम कीचक वेणु वेत्रवद विशाल गुल्मम प्ररु जन्व वनस्पति। तत्र अर्थात जिस जगह का मैंने अब तक वर्णन किया, तत्र वहां एकदा एक समय की बात है, गिरिकान आश्रय उस पर्वत के, उस त्रिकुट पर्वत के कंदरा में करेणु भीरवाण युथप पश्चरन, करेणु भीरवा हाथियों का जो समूह था, हाथियों के समूह का एक हाथी राजा, हाथी के राजा को गजेंद्र कहा जाता है, गज इंद्र, गज का अर्थ होता है हाथी और इंद्र का अर्थ होता है राजा। उस पर्वत की कंदरा में बहुत बहुत हाथी रहते थे, परंतु सभी हाथियों का राजा और पूरे जंगल का राजा एक हाथी था और उसका नाम था गजेंद्र। उसका, उस गजेंद्र का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, सकंटकम किचके वेणु वेत्रवद। यह गजेंद्र जब चलता था तो जिस रास्ते से चलता था कंटक, उस रास्ते में कई सारे कांटे के वृक्ष होते थे, जैसे गांव में होते हैं कांटे की झाड़ियां, कांटे के वृक्ष होते थे, बांस, बांस के वृक्ष उगे जंगल में, तो यही होता है। बांस और बेंत के वृक्ष होते थे, बड़ी बड़ी झाड़ी होती थी, परंतु इस झाड़ियों से, जंगल से, इस कांटे के वृक्ष के रास्ते से जब गजेंद्र निकलता था, अकेला नहीं निकलता था, हजारों हजारों हाथिनियों और हजारों हजारों बच्चों के साथ यह गजेंद्र निकलता था। जिस रास्ते से, जिस झाड़ी से होकर गुजरता था, उस झाड़ी को हाईवे बिल्कुल क्लियर करके चलता था। जहां से गजेंद्र निकल गया, वह झाड़ी या जंगल हो, गजेंद्र जहां से निकल गया वो बाद में हाईवे हो जाता था, बिल्कुल साफ हो जाता था, हजारों हजारों हाथी को लेकर। और गजेंद्र का ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, गजेंद्र जब अपनी कंदरा से बाहर निकलता था तो यत गंध मात्रा, बाहर निकलने से पहले, बाहर निकला नहीं है, इस जंगल के जितने लोग, जितने बड़े बड़े पशुओं को पता चलता कि गजेंद्र निकलने वाला है, इस रास्ते से गजेंद्र निकलने वाला है, यह गंध मिल जाती, गंध मात्र से हरियो, बड़े बड़े सिंह वहां से भाग जाते थे। देखिए, सिंह आज जंगल का राजा सिंह माना जाता है, सिंह, परंतु ये गजेंद्र हजारों हजारों सिंह को मारने में अकेला समर्थ था। बड़े बड़े शेर और सिंह भी डरते थे इससे। यह गजेंद्र जब रास्ते से निकलता था तो उसकी गंध मात्र से गिना रहे हैं, सबसे पहले हरियो, हरे का अर्थ सिंह, सिंह वहां से भाग जाते थे। गजेंद्रा और जो दूसरे हाथी होते थे जिसके विरुद्ध में, वे भी वहां से भाग जाते थे। व्याघ्र बाघ भी रफूचक्कर हो जाते थे, गजेंद्र आने वाला है। गजेंद्र जहां से चलता, बीच में कोई भी खड़ा रहता तो एक सूंड से उठाकर कई किलोमीटर दूर फेंक देता, चाहे वो बाघ हो, सिंह हो, या कोई भी साधारण हाथी हो, क्योंकि एक गजेंद्र में 10,000 हाथियों से भी ज्यादा इस गजेंद्र में बल था। तो सिंह, हाथी, बाघ और ब्याल मृगा, ब्याल मृगा का अर्थ होता है गेंडे, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, गेंडे ही कहते हैं, बड़ा बड़ा जानवर होता है, चमड़ी, हमने देखा है जब बचपन में छोटा था तो गया था प्राणी संग्रहालय में यहाँ पर, उस गेंडे की चमड़ी इतनी जाड़ी जाड़ी होती है, मोटी मोटी चमड़ी, और बहुत मोटा होता है। ये बड़े बड़े गेंडे भी गजेंद्र आ रहा है उसी गंध मात्र से भाग जाते थे, छिप जाते थे। सखगा और हिंसक जंतु भी वहां से भाग जाते थे जहां पर गजेंद्र निकलने वाला है। महोरगाश्चापि भयाद्रवंती सगोर कृष्णा शरभाश्च मर्य। बड़े बड़े सांप अजगर भी पता चलता कि गंध गजेंद्र निकलने वाला है, सांप और अजगर भी वहां से भाग जाते। देखिए गजेंद्र कितना प्रतापशाली था, गजेंद्र के प्रताप का वर्णन हो रहा। और शबर मृग, काले मृग, गोरे मृग, श्याम वर्ण और कृष्ण गौर वर्ण, ये सभी मृग वहां से भाग जाते थे गंध मात्र से। बड़े बड़े हिंसक प्राणी गजेंद्र से डरते थे। वृका वराहा महिष सलक्ष्या गोपुश्च शाला वृकमर कटाश्च। बड़े बड़े हिंसक प्राणी गजेंद्र के डर से भाग जाते थे, परंतु छोटे छोटे जो प्राणी थे वे बिंदास जंगल में घूमते थे, क्योंकि गजेंद्र उन लोगों के ऊपर कृपा करता था, क्योंकि आखिर तो एक साधारण हाथी नहीं था, ये सीक्रेट बाद में खुलेगी, ये कौन था। हिंसक प्राणी डरते थे, और छोटे छोटे प्राणी कहते हैं सिंह, सिंह, बाघ, गेंडे उस जंगल में छिप छिप कर घूमते थे, परंतु छोटे छोटे खरगोश, हिरण बिंदास घूमते थे। क्यों? क्योंकि गजेंद्र हमारा साथी है। पता चलता कि गजेंद्र है, गजेंद्र इनका साथी है, बकरी को देखकर या खरगोश को देखकर सिंह भाग जाता, आज की भाषा में भाई लोग कहा जाएगा। कोई कह दे कि ये भाई मुझे पहचानते हैं, लेकिन वह आज का बड़े से बड़ा भाई यदि जंगल में चला जाए, तो उसका 50 पैसा भी नहीं आएगा। एक झपट से फेंक देगा ये गजेंद्र। कहते वृका वराह भेड़िए भेड़ बकरी सुवर भैंसे रीच लंगूर कुत्ते बंदर खरगोश हरिण ये छोटे छोटे प्राणी चरंती भीता यदनु ग्रहण ये सब कैसे विचरण करते हैं करते थे कहते स्वच्छंद गति से। क्यों? अनुग्रहण गजेंद्र की कृपा से। खरगोश और हिरण और भेड़ बकरी सिंह की तरह चलते थे और सिंह और बाघ गजेंद्र की गंध से भाग जाते थे। ये गजेंद्र का प्रताप है। तो ये गजेंद्र के बारे में थोड़ा सा वर्णन। अब एक समय की बात एक समय की घटना याद करा रहे हैं। एक समय की बात है कि एक बार गजेंद्र इसी प्रकार अपनी कंदरा से निकला और अकेला नहीं गजेंद्र सबसे आगे चलता था। उसके पीछे हजारों उनकी पत्नियां हथनियां और उसके पीछे उनके बच्चे लोग हजारों के टोले में गजेंद्र चलता था। एक बार अपने घर से निकला और सब लोग रास्ता दे दिए सब लोग छिप गए आजू बाजू में। गजेंद्र चलने लगा। चलते 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 सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सधर्म तप्त करिभी करेणु भी रुतो मदच्युत करे वनुद्रुत। उन दिनों गर्मी की ऋतु थी और गर्मी की ऋतु होने के कारण और आपने पहले सुना कि वहां जो पर्वत थे उस पर्वत में चट्टाने जो थी शिखर जो थे वह लोहे चांदी और सोने के बने हुए थे। तो सूर्य इस पर्वत के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता और पर्वत से उसका प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर इस जगह पर आता। ऐसा होता है जंगल में कभी कभी। आप देखो बद्रीनाथ केदारनाथ जहां पर बर्फ सफेद पर्वत होते हैं जहां पर इस प्रकार से त्रिकुट पर्वत तो सूर्य की जो ताप होता है वो खींच लेते हैं और उस ताप को हजारों गुना करके उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। एक दृष्टांत के साथ आप समझ सकते हो। बिलोरी काश आपने देखा होगा। हम जब छोटे थे तो बिलोरी काश लेकर एक कागज रखकर उसके ऊपर बिलोरी काश रखते थे तो वह क्या करता है सूर्य की रोशनी को ज्यादा पकड़ता है और उसको एक बिंदु में छोड़ता है तो वह कांच वही सूर्य की गर्मी से वह कांच एक ही मिनट में वह कागज हो कपड़ा हो या कुछ भी उसे जला देता है वही सूर्य की गर्मी से। क्योंकि सूर्य का जो ताप होता है कई सारा ताप एक साथ वह डालता है उस पर। तो कभी कभी जंगलों में पर्वत का रिफ्लेक्शन एक साथ आकर एक स्पॉट पर आता है तो उसमें बहुत गर्मी लगती है। कभी कभी प्राणी लोग बहुत इसमें गर्मी से दुखी होती है होते हैं परंतु प्राणी लोग जान नहीं सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसी प्रकार गजेंद्र एक दिन जहां से जा रहा था उन दिनों बहुत गर्मी थी और गर्मी के कारण ये पूरा रिफ्लेक्शन गजेंद्र के ऊपर आ रहा था। इसलिए सधर्म तप्त बेचारा घाम के कारण करीबी करेणु भी बहुत पसीना से लथपथ हो गया। गजेंद्र को बहुत घाम हुआ और कैसे बहुत पसीना हो रहा था। करीबी करेणु भी साथ में उनके हाथी और बच्चे थे। रुतो मदत्युच करे बनुद्रुत गरिम गरिम ना परित प्रकंपयन। भले गर्मी हो रही थी लेकिन ये थोड़ी डरने वाला था। गर्मी हो या चाहे कुछ भी हो ये तो हजारों के झुंड में गजेंद्र चल रहा था। कैसे चल रहा था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गिरिम गिरिम ना परित प्रकंपयन। गजेंद्र जब दौड़ता था तो गिरिम गिरिम ना गिरी उस पर्वत को त्रिकुट पर्वत को हिलाता था और ये पृथ्वी भी कंपन करने लगती थी जब गजेंद्र दौड़ता था। बहुत कांपने की आवाज आती थी पृथ्वी कांप जाती थी गजेंद्र के चलने से। गिरिम गिरिम ना प्रकंपन कंपित हो जाती थी। यहां पर एक मिनट भी यदि पृथ्वी कांप जाए तो लाखों लोग हाहाकार करने लगेंगे। ये तो जब चलता था तब पृथ्वी को कंपाता था पृथ्वी को कंपाता था। निशेव्य मानो लिकुले दर्शने और ये दौड़ता था दौड़ते दौड़ते अब हाथियों के गाल से एक सुगंधी पानी चूता है। कुछ लोगों को पता होगा हाथी के गाल से जो जल निकलता है बहुत सुगंधित होता है। तो सुगंधित जल का पान करने के लिए भौंरे भन 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 करके हाथी के गाल के पास आते हैं और हाथी अपने बड़े बड़े कान से उसे उड़ाता रहता है। आपने देखा होगा हाथी कान हिलाता है वो भौंरे को उड़ाने के लिए। तो गजेंद्र दौड़ रहा था पर्वत को कपाते हुए, पृथ्वी को डोलाते हुए, और भन 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 भौंरे उनके आजू बाजू में भन भन कर रहे थे और इस प्रकार से गजेंद्र का वर्णन कर रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते गजेंद्र सोच रहा था कि पानी मिल जाए तो अच्छा है, बहुत प्यास लगी क्योंकि गर्मी के कारण, अब गर्मी की ऋतु में प्यास बहुत लगती है, पसीना हो रहा था। तो दौड़ते दौड़ते सोच रहा था पानी कहीं मिल जाए। सरोवर नील पंकज रेणु रुषितम जग्रीन व दूरान मद विलेक्षण। गजेंद्र ने दौड़ते दौड़ते चलते हुए देखा कि बहुत सुंदर सुगंध आ रही है और यह सुगंध कमल की सुगंध है और कमल सरोवर में होते हैं। तो गजेंद्र दौड़ते दौड़ते सोच रहा है कि अब पानी नजदीक में आया लगता है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहेंगे ये गजेंद्र और कोई नहीं, हम ही है। गजेंद्र बहुत बड़ा गृहस्थ है, हम भी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जब ट्रेन से कहीं घूमने जाते हैं, गर्मी की ऋतु है, ट्रेन में बैठे हैं और जब प्यास लगती है तो विंडो से देखते हैं कब स्टेशन आएगा, कब आएगा। गजेंद्र इसी प्रकार देख रहा है कब पानी आए और हम में पीऊं। वृतस्व युथेन त्रिशार्दितेन तत् सरोवरभ्या मथा मदद दुर्मत। दौड़ते 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 वह कई हाथियों से घिरा हुआ गजेंद्र, दौड़ते दौड़ते दूर से गजेंद्र ने एक सरोवर का दर्शन किया और सरोवर का दर्शन करते ही गजेंद्र ने सोचा हाँ अब जरा जल पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। विगाय तस्मिन् मृतांबु निर्मलम हेमार विंदोत्पल रेणु रुषितम। गजेंद्र ने देखा कि बहुत सुंदर सरोवर है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर कमल लगे हुए हैं, बहुत शीतल ठंडा निर्मल जल है। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दावानल में फंसा हुआ हाथी चारों ओर भागने का प्रयास करता है परंतु आग की लपट उसे बहुत गर्मी देती है और दुखी करती रहती है, और ऐसे हाथी को जब गंगा नदी जैसा शीतल जल का स्पर्श हो जाए तो उस हाथी को जितना आनंद आता है उतना आनंद प्रभु तुम्हारा दर्शन करने में हमें आ रहा है। तो कल्पना कर सकते हैं कि गजेंद्र को सरोवर को देखकर उतना आनंद आया जितना हमें भगवान साक्षात भगवान को देखकर आनंद आता है। तो गजेंद्र विगाह्य तस्मिन् मृतांबु निर्मलम, गजेंद्र उस सरोवर के पास गया और पत्नी और बच्चों को कहा कि आप बाहर रहिए। पता है ना ट्रेन से जब उतरते हैं तो व्यक्ति अकेला उतरता है, पत्नी बच्चों को ट्रेन में बिठाता है। गजेंद्र ने कहा कि आप सब लोग किनारे पर खड़े रह गए, पत्नी और बच्चे, और गजेंद्र उस सरोवर में प्रवेश किया निर्मल जल। पपो निकामम, सबसे पहले गजेंद्र ने सरोवर का जल पपो अर्थात पिया, खूब जम के पिया जल, क्योंकि वह जल हमारी तरह कोई बिस्लेरी नहीं था, बिस्लेरी का बाप था। आज का बिस्लेरी तो कितने दिनों से पहले भर कर रखते हैं, कितने दिनों का बासी पानी है, परंतु ये तो ताजा झरने से बहता हुआ पानी गजेंद्र पी रहा था। तो पप्पू सबसे पहले गजेंद्र ने उस पानी को पिया, पप्पू निकामम, फिर निज पुष्प करोद घृत, और फिर गजेंद्र ने अपने कर से, देखिए यहां पर कर है पुष्प कर, अपने हस्त कमल से, पुष्प का अर्थ होता है कमल और कर का अर्थ होता है हाथ, गजेंद्र ने अपने हाथ से पानी पिया। अब प्रश्न होगा गजेंद्र का हाथ कहां से आया, तो देखिए हाथी की जो सूंड होती है वही उसका हाथ होता है, हाथी की सूंड को हाथ माना जाता है। जैसे हम हाथ से पीते हैं तो हाथी पहले पानी को सूंड में भरता है फिर मुंह में डालता है, और इसीलिए आप देखिए हाथ को ही संस्कृत में हस्त कहते हैं, हाथ को संस्कृत में हस्त कहते हैं, क्योंकि हाथी हाथ से पानी पीता है, हाथी के पास एक हस्त होता है, इसलिए हाथी को हस्ती कहा जाता है। जिसके पास हस्त है उसे हस्ती कहा जाता है। संस्कृत में हाथी को हस्ती कहते हैं, पर तो हम लोग हिंदी में, क्योंकि हस्त को ही हिंदी में हाथ कहते हैं, इसलिए हिंदी में हाथी कह देते हैं। चला पता चला हाथी शब्द कैसे हुआ? क्योंकि सूंड को हाथी, हाथी की हाथ माना जाता है और उस हाथ से ही हाथी नाम हुआ। तो हस्ती कहो या हाथी कहो, परंतु यहां पर कह रहे हैं निष्पुष्प करोद घृत। हाथी ने सबसे पहले अपनी सूंड से वह पानी पिया और मात्माम वब्धिम न पयगत। इस श्लोक इसमें क्लियर नहीं लिखा है। कल्भ, कल्भ है ना, कल्म, कल्भ का अर्थ होता है थकान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाथी ने जब उस शीतल जल में प्रवेश करके पानी पिया तो हाथी की सारी थकान दूर हो गई। और फिर हाथी ने उस जल में स्नपयन, स्नान करना प्रारंभ किया। हाथी वास्तव में इस संसार में जितने मनुष्य प्राणी जो भी है, 84 लाख योनि में हाथी का स्नान प्रसिद्ध है। क्योंकि हमें घर पर स्नान करने के लिए बाथरूम में वो फुवारा लगाना पड़ता है, शावर, परंतु हाथी अपने सूंड से ही शावर का काम कर लेता है। सूंड से पानी भरता है और ऐसे छोड़ता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सब पुष्क रेणुद गृष्टि शिकारंभ हुई। कहते हैं शिकर, शिकर का अर्थ होता है एक बूंद, बूंद ऐसे कर दो तो बूंद निकलती है, और बूंद को यदि दीवार पर छिड़का जाए तो एक बूंद के 100 या 500 बूंद हो जाती है, उसे शिकर कहते हैं। तो हाथी अपने सूंड में पानी भरकर जब छोड़ता है तो शिकर शावर की तरह उनके शरीर पर जाता है। तो हाथ वह गजेंद्र उस शीतल जल में पहले तो पानी पिया और पीने के बाद उसमें स्नान करने लगा। सब पुष्क रेणु घृतशी करांबु भी निपार्य यन सन पाय अन्य था गृही। गजेंद्र स्वयं पानी पिया और स्नान किया, खूब 3 घंटा स्नान किया, 3-4 घंटा अकेला। और स्वयं पानी पीने के बाद, स्वयं स्नान करने के बाद फिर बच्चों को कहा, बच्चे लोग आओ लाइन में खड़े रह जाओ, अंदर मत आना, तुम डूब जाओगे, ट्रेन से बाहर मत निकलना, गिर जाओगे, ट्रेन चली जाएगी। गजेंद्र अंदर सरोवर में खड़ा है और अंदर खड़े रहकर पानी सूंड में भर भर कर अपने पुत्रों के मुख में देने लगा। चलो ये भी ठीक है, एक पिता अपने पुत्रों को पानी पिलाता है, लेकिन इसके बाद गजेंद्र अपनी पत्नियों को मुंह में पानी पिलाने लगा। चलो यह भी ठीक है। यह सबको पानी पिला देने के बाद गजेंद्र फिर उस सरोवर से जल भर भर के सबको नहलाने लगा। अब नहलाने में भी एक एक को जल्दी जल्दी नहलाकर चड्डी पहनाकर बाहर निकाल दिया होता तो अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब ये गजेंद्र उसमें फिर क्रीड़ा करने लगा। अब किसी भी चीज की मर्यादा लिमिट होती है, कोई भी काम अति नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित हमारे नलिन प्रभु चाणक्य की सीरियल लॉन्च करने वाले हैं, यदि आपको टीवी में देखना है तो ये इसके पास मिलेगी। लेकिन खैर, चाणक्य पंडित अपने नीति शास्त्र में कहते हैं किसी भी कार्य को अति नहीं करना चाहिए। कहते हैं अति रूपात यथा सीता, भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी में अति रूप था, सुंदरता बहुत अति थी। खैर वह आज की नारियों की तरह मेकअप और ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी, लेकिन अति रूपात, अति रूप के कारण सीता का हरण हो गया। यदि रूप नहीं होता तो कौन लेकर जाता? अति रूपात यथा सीता अति गर्वेण रावण। रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था, परंतु अभिमान और गर्व इतना था भगवान के हाथ से मरना पड़ा। अति दानात बलि बंदो, दान देना अच्छी बात है, परंतु अति दान, बलि महाराज ने अति दान कर दिया तो बांध, भगवान ने उसे बांध दिया। अति सर्वत्र वर्जित, इसलिए अति सभी जगह पर वर्जित है। अति किसी भी चीज में अति नहीं होना चाहिए, अति करने वाला मरेगा। देखिए गजेंद्र की क्या हालत होगी। गजेंद्र पूरे जंगल को कपाने वाला गजेंद्र की हालत आप देखिए। अभी तो फिलहाल क्रीड़ा कर रहा है, सभी बच्चों को सब पानी फेंक रहा है, क्रीड़ा कर रहा है पत्नियों के ऊपर, जल क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। फिर तो गजेंद्र हाथी 10,000 हाथी का बल, वो तो पानी उठा उठा कर डालने लगा सबके ऊपर जोरों से। और पानी डालते डालते वो सरोवर का जो जल था, जैसे समुद्र मंथन होते हुए समुद्र पूरा खोलने लगा, पानी पूरा हिलने लगा, वह सरोवर में पूरा पानी प्रकंपित करने लगा। अब जो हाथी जहां पर चलता है तो वह पृथ्वी को कपाता है, वह हाथी क्रीड़ा करने लगे छोटे से सरोवर में, तो सरोवर की क्या हालत होगी? जैसे 150 किलो का कोई आदमी किसी छोटे टब में गिरे और पानी बाहर आ जाए, हालत यहां पर वही हुई। तो क्रीड़ा करने लगा घृणी करेणु, और कैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखिए, निपार्य यन सन्न पयन यथा गृही। सुखदेव गोस्वामी याद करा रहे हैं कि ये गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को इस प्रकार से क्रीड़ा करने लगा, अपनी पत्नी और बच्चों में वैसे आसक्त हो गया जैसे कलयुग में इस संसार में रहने वाला गृहस्थ। गृही शब्द दिया, जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति अपने गृह में आसक्त होता है, गृहस्थ जो होते हैं वो गृह में बहुत आसक्त होते हैं। तो सबसे पहले गृह का अर्थ क्या होता है यह जानना होगा। गृह के दो अर्थ हैं। गृह का एक अर्थ है घर, घर जिस घर में हम रहते हैं उसमें हमारी बहुत आसक्ति होती है। हम चाहे कहीं भी घूमने गए हो, चाहे वृंदावन गए हो, तो 5 दिन 10 दिन है ना समय प्रभु, सही प्रभु में कह रहे थे अब घर जाना है हरिद्वार में, 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद कहते हैं कि प्रभु जी अब जाना है घर पर। घर याद आता है, भले घर भाड़े का घर है उसमें कुछ लेना नहीं है, लेकिन दुनिया के कहीं भी कोने में जाए तो कुछ दिन के बाद घर याद आता है। ये सही बात है। काश्मीर में भी आप चले जाओ, हमारे आशीष प्रभु गए थे कहीं विदेश में गए थे घूमने के लिए, घर याद आ रहा था प्रभु देखिए आ रहा था, इतना सुंदर घूमने गए थे। इसे गृहस्थ कहते हैं, जो गृह याद आए, जो गृह में आसक्त हो, गृह घर याद आता है। कहीं भी हम घूमने जाए, कहीं भी कितना भी सुंदर फैसिलिटी मिले, पर जितना आनंद हम हमारे घर पर बेड में आकर सोते हैं उतना आनंद और कोई भी होटल में नहीं, कहीं भी नहीं मिलता। भले छोटी सी खोली है, चाली है छोटी सी, परंतु घर है वो, घर वो घर गृह, इसे गृहस्थ कहते हैं। साधु का स्वभाव ऐसा नहीं होता है, साधु को कोई घर भर में आसक्ति नहीं होती है, इसलिए कहते हैं पानी बहता भला संत चलता भला। साधु पानी की तरह होता है, आज यहां तो कल वहां, परंतु गृह जो होता है गृहस्थ वो गृह में बहुत आसक्त होता है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह गजेंद्र एक गृहस्थ के समान आसक्त था। और गृह का दूसरा अर्थ होता है, चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को कहते हैं कि देखिए माता जी हम लोग गृहस्थ हैं, महाप्रभु को विवाह करना था। माता को कैसे कहे मुझे विवाह करना है? कोई भी लड़का अपनी मम्मी को कैसे कह सकता है मम्मी मेरा विवाह करा दो? तो उल्टी बात ऐसे कान पकड़ाया चैतन्य महाप्रभु ने, देखिये माता जी हम लोग गृहस्थ है, और शास्त्र में गृहस्थ का अर्थ पता है आपको क्या लिखा है? कहते न गृहम गृहत्याहु गृहिणी गृह उच्यते। गृहस्थ व्यक्ति तब माना जाता है जब एक अच्छी सी पत्नी हो। तो आपको नहीं लगता है कि हमें ठीक ठीक गृहस्थ बन जाना चाहिए? तो शास्त्र में कहा गया है न गृहम गृहत्याहु गृहिणी गृह उच्यते, पत्नी को ही गृह कहा गया है। और पत्नी सबसे बड़ा गृह है और सबसे बड़ा ग्रह है। हसीए मत, पत्नी के लिए पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये सोम सोम बुध शुक्र शनि उतना नहीं नड़ता है जितना पति नड़ता है। तो ये गृह में सब लोग आसक्त है। तो जैसे यह गृहस्थ व्यक्ति अपने गृह में आसक्त होता है, वैसे यह गजेंद्र अपने पत्नी और बच्चों में आसक्त था। अब पत्नी और बच्चों में आसक्त रहने से क्या हालत होती है इस कथा से यह जानना मत। लेकिन मैं सबसे पहले आपको यह सचेत करना चाहता हूं, मैं यह नहीं कहता हूं कि विवाह नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसका बिल्कुल गलत मीनिंग ले लेते हैं। विवाह कोई बंधन का कारण नहीं है या पुत्र कोई बंधन का कारण नहीं है, परंतु पत्नी और पुत्र में जो आसक्ति है ये बंधन का कारण है। देखिए यहां पर गजेंद्र पुत्र को पानी पिलाना ये कोई, ये तो कर्तव्य है पिता का, ये कोई गड़बड़ नहीं है। पत्नी को पानी पिलाना ये पति का कर्तव्य है। पत्नी और पुत्र को नहलाना स्नान कराना चलो ये भी एक कर्तव्य है, परंतु स्नान करा ले कर्तव्य खत्म कर ले वहां तक ठीक है, फिर उसके साथ क्रीड़ा करना, उसके साथ और एक्स्ट्रा कुछ प्रेम ही दिखाना और आप अच्छे हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये टाइम पास दुनिया का, ये गलत चीज है। और ये करने से क्या होगा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, घृणी करेणु कर्वांश दुर्मदो नाचष्ट कृष्णम कृपणोज मायया। क्या कहा जाए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गजेंद्र अपनी पत्नी और पुत्र में इतना आसक्त था कि आसक्ति में रहते हुए अज भगवान अज की माया को नहीं समझ पाया। न चष्ट कृष्णम कृपणो अज मायया। अज भगवान का एक नाम अज है, शुक्रवार को कहा था लेकिन सब लोग नहीं थे तो फिर से कह दूं, भगवान का एक नाम अज है, यहां पर अज शब्द आया है, अज माया, अज की माया। तो ज माने जन्म होता है, ज का अर्थ है जन्म, जिसका जन्म होता है उसे ज कहते हैं और जिसका जन्म नहीं होता है उसे अज कहते हैं। तो भगवान का कभी जन्म नहीं होता है इसलिए भगवान को अज कहा जाता है, अज, अज नहीं अज संस्कृत में, क्योंकि भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। तो प्रश्न हो सकता है कि तो फिर 24 तारीख को तो कृष्ण जन्माष्टमी है, आप कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता है तो 24 तारीख को जन्माष्टमी क्यों हम मनाते हैं, रामनवमी क्यों मनाते हैं? तो भगवान जन्माष्टमी के दिन या रामनवमी के दिन या वराह द्वादशी या कोई भी उस दिन भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। जैसे अभी रात है तो सुबह सूर्य का जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी मां के गर्भ से सूर्य ने जन्म लिया और बाहर आया, नहीं, सूर्य का जन्म है ही परंतु रात को चला जाता है सुबह वापस आता है, रात को अप्रकट होता है सुबह प्रकट होता है। वैसे भगवान तो सब जगह पर है परंतु कभी कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य धर्म की स्थापना करने के लिए और साधुओं को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं, अपना प्रयोजन समाप्त हो जाने के बाद अप्रकट हो जाते हैं। प्रकट होना अप्रकट होना प्रकट अप्रकट, इसी को हम जन्म मान बैठते हैं। तो भगवान का हमारी तरह किसी माता के गर्भ में रहकर दुखी होकर जन्म नहीं होता, हम तो जन्म लेते हैं तो रोते हुए जन्म लेते हैं, और यदि कोई बच्चा रोता नहीं तो उसे थप्पड़ मारकर रुलाया जाता है, ये रोया हुआ बच्चा न रोए तो ठीक नहीं माना जाता है। तो हम रोते हैं परंतु भगवान जन्म लेते वक्त रोते नहीं है, वे तो उपदेश देते हैं, चाहे राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो, जहां जहां भगवान ने अवतार लिया वहां वहां अपने माता पिता को उपदेश दिया। आजकल कुछ लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, ये बाबा वो बापू, व्यासपीठ पर बैठकर क्या नाम लेना, व्यासपीठ को क्यों अपवित्र करना, परंतु अपने एक साधारण जीव अपने आप को भगवान मानते हैं, देखना चाहिए। भगवान अज, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, और लोग जन्म और जन्म लेने के बाद भगवान उपदेश देते हैं, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि धारण करके जन्म लेते हैं। आज के भगवान को पूछा जाए कि जन्म के वक्त आप एक चिथड़ा भी लेकर एक लंगोट पहनकर आए थे तो हम आपको भगवान मानेंगे। तो अज भगवान का एक नाम अज है क्योंकि वे अजन्मा है और अजन्मा का जन्म हम मनाते हैं। तो अज गजेंद्र उस अपनी पत्नी और पुत्र में आसक्त रहते हुए उस अज की माया को न चष्ट न समझ पाया। तम तत्र कश्चि नृपदेव चोदितो ग्राहो बलियांश चक्रणे रुषाग्रहित। गजेंद्र जब उस सरोवर में खड़े हुए अपनी पत्नी के ऊपर बच्चों के ऊपर पानी डाल रहा था और बिल्कुल घूम घूम करके एक सेकेंड भी वो खड़ा नहीं रहता था, पानी भरते हुए डालता था पूरा, वह चक्रवात के समान गजेंद्र पानी डालना प्रारंभ किया, सरोवर का जल आंदोलित होने लगा और सरोवर में जितने भी प्राणी पशु जो भी थे सरोवर में आंदोलित हो गए और उस सरोवर में एक महान एक बहुत बड़ा विकराल, बहुत विशाल ग्राह मगरमच्छ रहता था। और मगरमच्छ ने देखा कि ये सरोवर में आज पानी इतना क्यों खोलने लगा, और देखा कि यहाँ पर पानी खोल रहा है। तुरंत मगरमच्छ बाहर आया और हाथी के पांव को पानी में देखा। हाथी तो अपने पत्नी और पुत्र की सेवा में मदमस्त था, और मगरमच्छ धीरे 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 उस गजेंद्र के पास आया, और गजेंद्र के पास आकर मगरमच्छ ने उस गजेंद्र उस हाथी के पांव को पकड़ लिया और ऐसे अपने दांत में फंसा लिया। हाथी गजेंद्र जोर से चिकारने लगा और उसकी चिकार से यह पृथ्वी यह सब कुछ हिल गया। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया अपना पांव को खींचने का, परंतु गजेंद्र उस मगरमच्छ के मुख से पांव को बाहर नहीं निकाल सका, क्योंकि मगरमच्छ का दांत बहुत मजबूत होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गजेंद्र ऐसे हजारों मगरमच्छ को एक सूंड से फेंक देता, परंतु क्या करे, स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। गजेंद्र अपनी गली में नहीं था, गजेंद्र पृथ्वी में नहीं खड़ा था। सुखदेव गोस्वामी कहते थे, यदि यह गजेंद्र पृथ्वी के ऊपर खड़ा होता, जमीन के ऊपर खड़ा होता, ऐसे लाखों मगरमच्छ आते तो उसे उठाकर फेंक देता, परंतु ये पृथ्वी में नहीं, ये पानी में खड़ा, दूसरे की गली में, दूसरे के मोहल्लों में खड़ा है। इसलिए गजेंद्र उसके साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया गजेंद्र ने, परंतु बाहर निकल नहीं पाया। एक काम करते हैं, गजेंद्र को मगरमच्छ के मुंह में रहने दीजिए, बारिश और पानी आने लगा है। देखिए, हम भी गजेंद्र से कम नहीं है, हम भी संसार की आसक्ति में, पत्नी और पुत्र की आसक्ति में पड़े हुए हैं, और यह काल रूपी मगरमच्छ हमें अपने मुख में डाल रहा है। प्रतिदिन प्रति सेकेंड हमको मार रहा है, हम लोग मर रहे हैं, तो हम भी गजेंद्र से कम नहीं है। तो अब यह गजेंद्र किस प्रकार से मगरमच्छ से छूटता है और किस प्रकार भगवान की प्राप्ति करता है, हम अगले बुधवार से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
भजो 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 मन पांडुरंग विठला,
भजो 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 मन पांडुरंग विठला,
भजो 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 मन पांडुरंग विठला,
भजो 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 मन पांडुरंग विठला।
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला,
पांडुरंग विठला।
सभी लोग प्रेम से गाइए, गजेंद्र फंसा हुआ है हमारी तरह।
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग भजो भजो मन पांडुरंग विठला,
भजो
भजो भजो भजो मन पांडुरंग विठला,
भजो
पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, भजो 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 मन पांडुरंग विठला,
भजो सभी लोग प्रेम से,
भजो 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 मना पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग भजो 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 मना पांडुरंग विठला भजो 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 मना पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठल विठल विठला पांडुरंग विठला विठल विठल विठला पांडुरंग विठला विठल 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 विठला पांडुरंग विठला विठल विठल विठला पांडुरंग विठला हा भजो 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 मम पांडुरंग विठला हा भजो 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 मन पांडुरंग विठला हा विठल विठल विठला पांडुरंग विठला हा विठल विठल विठला पांडुरंग विठला हा विठल 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 पांडुरंग विठला विठल 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 पांडुरंग विठला भजो 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 मन पांडुरंग विठला हा भजो 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 मन पांडुरंग विठला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय
श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत हिताय गौर प्रेमानंदे। दो मिनट शांति से बैठिए, कुछ बोलना चाहता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है सबसे पहले?